यह लक्ष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया इस्कॉन कानपुर में श्री शारदा माता मंदिर। अध्याय 22 श्लोक संख्या 128 चैतन्य चरितामृत।
सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो ऊपर मैं प्रयास करूँगा जोर से बोलने के लिए। सुनाई दे रहा है सबको, पीछे भी सुनाई दे रहा है। तो आज हम आपको चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा जो कि उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी थी उसके विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ा स्लो हो सकता है। आप सनातन गोस्वामी से परिचित हो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उनके 6 बड़े प्रसिद्ध भक्त है जिन्हें हम 6 गोस्वामियों के नाम से जानते हैं। कुछ दिन पहले आपने पानी आदि उत्सव मनाया था और उस दिन रघुनाथ गोस्वामी के विषय में भी सुना होगा। तो रूप और सनातन महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे। दोनों भाइयों की रुचि थी महाप्रभु जी की सेवा में जुड़ने के लिए। रूप गोस्वामी और उनके भाई उस समय सबसे प्रसिद्ध राज्य का शासन कर रहे थे। 500 साल पहले या 520 साल पहले विश्व का सबसे धनी स्थान भारत था और भारत का सबसे धनी स्थान था बंगाल का राज्य। भगवान का राज्य का शासन रूप और सनातन कर रहे थे। पहले रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी। जब उन्होंने अभी सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी इन सिक्कों के साथ और उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। दिस मैन कैन गो ऑन ओनली वन और 25% उन्होंने रिश्तेदारों को बांटा। सनातन गोस्वामी उनके भाई बड़े भाई थे, उनकी भी रुचि थी कृष्ण कथा में। उन्होंने राजा को सूचना भेजी थी कि मैं बीमार हूँ। बीमार थे नहीं तो सूचना भेजी थी मैं बीमार हूँ। तो राजा ने थोड़ी देर के बाद अपने आए हुए डॉक्टर को भेजा सनातन गोस्वामी के घर देखने के लिए कितनी गहरी बीमारी है और क्या इलाज हो सकता है। आज के ज़माने में तो अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आना चाहे वो घंटी बजाता है, आप पूछते हो कौन है, जैसे आप टेलीफोन कॉल कोई आपको फ़ोन करे तो पहले आप देखते हो किसका फ़ोन है, फिर जवाब देते हो। पर और अगर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति घर में नहीं आए और दरवाज़ा ही नहीं खोलता, तो ये सुविधा नहीं थी उन दिनों में। तो डॉक्टर साहब सीधा घुस गए सनातन के घर, वहाँ उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने राजा को कहा, सनातन तो बिल्कुल ठीक है, वो तो ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवतम का अध्ययन कर रहा था। तो राजा ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा भाई रूपा वो भी निकम्मा निकला, नौकरी त्याग दी उसने, क्योंकि ये दो बड़े ईमानदार सेवक थे। तो राजा निर्भर था इनके शासन और प्रयास के ऊपर। तो राजा ने सनातन को डांटा और कहा, तुम जिम्मेदारी उठाओ। सनातन ने कहा, अब तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, अब मेरे बस का नहीं है। तो राजा ने सनातन को जेल में डाल दिया। जेल में जो जेल कीपर था, उसी वक्त जब वो जेल में थे, सनातन को पत्र आया भाई का कि मैंने इतनी रकम इस स्थान में रखी है। तो सनातन ने थोड़ी रकम 5,000 सिक्के वो जेलर जेल कीपर को दिए, देने का दादा बताया, पर इस निवेदन के साथ उन्हें छोड़ दिया जाए। फिर अंत में वो छुटे, और जब वो छुटे तो वो जा रहे थे वाराणसी चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए। रास्ते में रुके एक स्थान में, जो ऐसे होटल होते हैं जहाँ की यात्री रात को रुक सकते थे। उस सनातन के साथ एक सेवक था जिसका नाम था सुशांत। तो सनातन ने देखा कि इस होटल में जहाँ रुके हैं जो मालिक है बहुत ज़्यादा खातर कर रहा है, खुशामद, और कोई व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा खातर करे तो आप डर जाते हो, है ना, अब सोचते जरूर इसको कुछ चाहिए होगा। और सनातन का तो अभ्यास था राजनीतिक कार्यों में। तो सनातन ने अपने नौकर से पूछा, तुम कुछ संपत्ति तो नहीं रख रहे अपने पास? और ईशान ने कहा, हाँ मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8। उसने बोल दिया 7। तो सनातन ने कहा, तो मौत को अपने पास क्यों रख रहे हो? तो सनातन ये 7 सोने के सिक्के देकर दे रहा था इसे होटल के मालिक को। होटल के मालिक के पास एक जोशी था जो अंदाजा लगा लेता था जब कोई व्यक्ति मन आता था होटल में कि कितना धनी है, और अगर बहुत धनी होता था तो लूट लेते थे। तो इस जोशी ने उस स्थान के मालिक को कहा, ये व्यक्ति बड़ा धनी है, इसके पास 8 सोने के सिक्के हैं। जब सनातन गोस्वामी ने कहा, ये सिक्के आप ले लो और मेरा सहयोग देना, क्योंकि मैं राजा से छुप कर वाराणसी पहुँचना चाहता हूँ, वो मालिक इतना शर्मिंदा हो गया, उसका मैं तो हाथ में मार के तुम्हारी संपत्ति देने वाला था, अब तुम खुद ही आए हो तो मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं लूँगा। सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे तो कोई और मार के ले लेगा, इससे अच्छा है कि आप ही ले लो। तो फिर उस व्यक्ति ने सनातन का सहयोग दिया और नासिक पहुंचने में। रास्ते में सनातन रुके, उनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था श्रीकांत। श्रीकांत भी उस समय एक मुसलमान राजा के यहाँ सेवा कर रहे थे। लगभग 500 साल पहले भारत में पठानों का राज्य शुरू हो गया था। तो श्रीकांत आया था 3 लाख सिक्के लेकर घोड़े खरीदने के लिए राजा के लिए। जब श्रीकांत ने देखा सनातन को, लंबे बाल, फटे हुए कपड़े, तो उन्होंने कहा, क्या ये तुम कर रहे हो? नौकरी त्याग दी, सब त्याग दिया, अभी साधु जैसे घूम रहे हो, आओ इधर रहो। तो सनातन की इसमें रुचि नहीं थी, पर उन्होंने सनातन को एक महंगी शॉल ओढ़ने के लिए दे दी। तो सनातन फिर पहुंचे वाराणसी, यहाँ की चैतन्य महाप्रभु एक चंद्रशेखर नाम के भक्त के घर में निवास कर रहे थे। चंद्रशेखर जो थे ऊंची जाति के नहीं थे, नीची जाति के थे। आजकल तो भारत में ऊंची जाति नीची जाति की बहुत चर्चा की जाती है ना, और कई बार लोग ऊंची जाति में जन्म लेते हैं तो नीची जाति में नाम लिखवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उसमें ज़्यादा सुविधा मिलेगी, तो पैसे देकर नाम लिखवाते हैं। पर चंद्रशेखर चैतन्य महाप्रभु ने पहले प्रचारक थे जिन्होंने ऊंची जाति नीची जाति में विश्वास नहीं किया। जो भगवान का भक्त है वो ऊंची जाति का है, तो भक्त नहीं है वो नीची जाति का। ये है हमारा सिद्धांत। जैसे अनाथ, अनाथ कैसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में निवास कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता था कि बाहर एक संत बैठा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, बाहर जाके देखो, एक महान संत आया है। तो जब चंद्रशेखर बाहर आया देखने, तो उसने केवल एक व्यक्ति को देखा जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी मौला जैसे। तो उस चंद्रशेखर ने लौट कर कहा, नहीं वहाँ तो कोई संत नहीं खड़ा। तो महाप्रभु ने कहा, फिर से जाओ। फिर से गए, तो फिर लौट कर उन्होंने कहा, वहाँ कोई संत तो नहीं है, एक मौला है ऐसा। तो महाप्रभु ने कहा, वो मौला नहीं है, वो महान संत है। सनातन गोस्वामी जब अंदर आए, उन्हें गले लगाया और सनातन ने देखा कि महाप्रभु उनके जो महंगी चादर थी जो श्रीकांत ने दी थी उन्हें, जो वो उड़ रहे थे, उसको देख रहे हैं। तो सनातन समझ गए कि महाप्रभु खुश नहीं हैं ये महंगी चादर देखकर। तो सनातन फिर गए गंगा के तट पर, वहाँ एक यात्री था जिसने एक फटी हुई चादर ओढ़ी हुई थी। तो सनातन ने उसे कहा, ये महंगी चादर ले लो, इसके बदले में जो आपकी पुरानी चादर है वो मुझे चाहिए। तो उस बंगाली यात्री ने कहा, क्या मखौल कर रहे हो क्या, तुम ये महंगी चादर बदलोगे ये फटी हुई चादर के लिए? उन्होंने कहा, नहीं। तो जब महाप्रभु ने देखा कि सनातन ये फटी चादर ओढ़ के आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। और सनातन महाप्रभु ने कहा, एक अच्छा डॉक्टर मरीज का इलाज करके जो बीमारी का कारण है उसे रहने नहीं देता। तो इस प्रकार सनातन उनके भाई ने बड़ी प्रिय सेवा की भगवान की, हरे कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु ने हरे नवेशन जनरेटर, तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। और अंत में उन्होंने पांच महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा की। ये श्लोक लिखा हुआ है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप देख सकते हो श्लोक को, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिरसदाय सेवन साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण श्री मूर्तिरसदाय सेवन साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिरसदाय सेवन। One should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, hear Srimad Bhagavatam, recite at Mathura, and worship the deity with faith and veneration. Responsibly, you can repeat after me. One should associate with devotees.
One should associate with devotees.
Chant the holy name of the Lord.
Chant the holy name of the Lord.
Hear Srimad Bhagavatam.
Hear Srimad Bhagavatam.
Reside at Mathura.
Reside at Mathura.
Or Kanpur. And worship the deity.
And worship the deity.
With faith.
With faith.
And veneration.
And veneration.
And I'll read the next verse. These five limbs of devotional service are the best of all. Even a slight performance of these five awakens love for Krishna. Purport by Srila Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakur points out that there are 35 items up to the point of observing special vows in the month of Kartik. To these 35 items, another 4 are added, namely marking tilak on different parts of the body, writing the names of the Lord all over the body, accepting the deity's garland, and accepting charanamrita. These 4 items are understood to be included by Krishnadas Kaviraj within Archana worship of the deity. So, jaise maine kaha, Chaitanya Mahaprabhu ne Sanatan Goswami ko, Rupa Goswami ko bhi shiksha di bhakti ke vishay mein. Rupa Goswami ko shiksha di thi prayag mein. सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के पश्चात उन्होंने ये 5 अंगों पर बल दिया। तो ये 5 अंग जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला क्या है?
साधु
संग। तो साधु संग शास्त्र में आप पढ़ते हो बार बार, साधु संगत की लाभ उठाओ। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र काय लावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धाय। सारे शास्त्र में कहा गया है भक्तों की संगत में रहो। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमें साधु संगत प्राप्त हो। और साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन को बिता रहा है, जो कि आपको वही उपदेश दे रहा है जो कि शास्त्र में है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने हमें वही शिक्षा दी जो कि शास्त्र में है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मेरे विचार से मेरे ऐसे होना चाहिए, उन्होंने सदा यही कहा श्री भगवान वाचा परम भगवान बोल रहे हैं। तो साधु संगत में रहोगे तो अच्छे भाव अनुकूल होंगे, इसलिए साधु संगत की आवश्यकता है। साधु संगत आप दो रूपों से प्राप्त कर सकते हो, भक्त साधु और ग्रंथ साधु। जैसे कि इस संसार में आपने अनुभव किया होगा प्रचार के कार्य पर बल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से ग्रंथों को अध्ययन करने के पश्चात अनेक व्यक्ति जुड़े हैं भक्ति में। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य यह है कि सबको भगवान का संदेश देना। तो साधु संगत, हमें साधु संगत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ध्रुव महाराज, नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं भगवतम के 34 स्कंद में कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। हम प्राप्त कर सकते हैं संगत उनके जो कि भक्ति में आपसे आगे है, भक्ति में आपके बराबर है, भक्ति में आपके पीछे है। तो जब हमें मौका मिले कि हम उनकी संगत में आए, क्योंकि भक्ति में आपसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। जब आप अपने बराबर के भक्तों को मिलो, जब मित्रता का भाव होना चाहिए। जब आप इन्हें मिलो जिनके पास आपसे भक्ति में कम ज्ञान है, तो उनके प्रति हमें दया की भावना होनी चाहिए। तो साधु संगत के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान आराम, साधु संगत के द्वारा आध्यात्मिक जीवन हमारा आराम होता है। इसलिए सारे शास्त्र में इस विषय पर बल दिया गया है। संगत का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, सच झूठ। बुरी संगत में रहोगे तो बुरे भाव अनुकूल होंगे, अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे भाव अनुकूल होंगे। इसलिए हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हम बकायदा साधु संगत में रहें। आप आज इस कार्यक्रम में अनेक कॉन्ग्रीगेशनल भक्त भी हैं, तो इस्कॉन के अनेक प्रोग्राम हैं, रविवार का प्रोग्राम, अनेक प्रचार के प्रोग्राम्स हैं, इनका हमें लाभ उठाना चाहिए। साधु संगत में रहोगे तो सदा सुनोगे भगवान का संदेश, और अभक्तों की संगत में रहोगे तो क्या सुनोगे? बहुत एक चर्च, और उससे हमें बचना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संगत त्यागा ये वैष्णव आचार, हाँ अभक्तों की संगत से बचो। तो हम सब का ये प्रयास रहना चाहिए साधु संगत। प्रभुपाद जी प्रचार के दौरान एक समय रशिया गए थे, पहली बार प्रभुपाद जी वहाँ गए थे अपने दो सेक्रेटरी के साथ। उस वक्त इस्कॉन का एक भक्त भी नहीं था उस देश में। प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी जो थे बाजार में जा रहे थे दूध और फल खरीदने के लिए। उन दिनों में उस देश में लोग हिंदी इंग्लिश भी बहुत कम बोलते थे। खैर खोजते खोजते उन्हें एक व्यक्ति मिला जो थोड़ी अंग्रेजी बोलता था, और समझ गए सेक्रेटरी श्याम सुंदर ने उसे कहा। उसे ये पता लगा कि ये जो रशियन है अंग्रेजी भी बोलता है, तो योगा में इसकी रुचि है। तो उसने कहा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं जो कि योगा के बड़े प्रचारक हैं, और इस प्रकार वो आए प्रभुपाद जी को मिलने। 3 दिन के अंदर प्रभुपाद जी ने उन्हें पूरी शिक्षा दे दी और शिक्षा दी, दीक्षा भी दे दी, और प्रभुपाद जी ने उन्हें गीता का संदेश भी बताया, और इस व्यक्ति ने प्रचार का कार्य शुरू कर दिया, और इस प्रचार के द्वारा हजारों भक्त बने बाद में। तो साधु संगत का बड़ा प्रभाव रहता है, और हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। तो आप सब जो घरों में रहते हो, आपको भी रविवार के दिन कम से कम मंदिर में जरूर आना चाहिए। और जब हम मंदिर में आए तो मंदिर में आकर भगवान की सेवा में भी जुड़ना चाहिए। हम जब हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं तो किस लिए, इस उच्चारण में क्या कहते हैं भगवान से? हम कहते हैं कि बगैर कि हमें भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। तो साधु संगत में हम सबका रहने का प्रयास होना चाहिए। साधु संगत में रहोगे तो फिर क्या सुनोगे? आप सुनोगे हरी नाम की महिमा, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा बकायदा बड़े बड़े उत्सव किए जाते हैं। किस लिए? एक ही भाव से साधु संगत प्राप्त होगा तो ये साधु संगत के द्वारा आध्यात्मिक उत्साह बढ़ेगा। आप खुद अनुभव कर सकते हो, जब आप भक्तों की संगत में रहते हो आपका उत्साह ऊंचा रहता है, और अगर आप थोड़े समय के लिए भक्तों की संगत से जुदा हो जाओ तो क्या परिणाम होता है? आध्यात्मिक उत्साह भी कम हो जाता है। इसलिए हम सब का यह प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संगत में रहें, और जब हम भक्तों की संगत में रहें हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों के गुणों को देखें। गुणों को देखोगे तो अच्छा संबंध होगा, अगर हम केवल नुक्स को देखेंगे तो फिर कल संबंध भी जुड़ सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले क्या कहा? साधु संगत, आगे नाम कीर्तन। साधु संगत में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान मिलेगा। शास्त्र में लिखा गया है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो न सेव न सेव न सेव गुदरता। हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम यही एक साधन है इस कलयुग में। तो हरि नाम एक साधन है, ये है शास्त्रों का निर्णय। जब परीक्षित महाराज से पूछा कि बताओ किस प्रकार कलयुग में लोगों का उद्धार होगा, गुरुदेव गोस्वामी ने कहा कले दोष निधि राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है क्या? हरि का नाम। तो भक्तों के संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त होगा, और हरि नाम का उच्चारण करोगे तो उसके द्वारा हृदय की जो मैल है ये दूर होगी। हृदय में मैल है या नहीं? काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य अनेक अनर्थ है, और अगर आप हृदय की मैल को दूर करना चाहते हो तो क्या है साधन? ये हरि नाम का उच्चारण। ये जो भक्ति का ज्ञान है, भक्ति की विधियां हैं, इनके पालन से आप माया का प्रभाव, माया के प्रभाव से बच सकते हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो अपने शिष्यों को आदेश दिया था प्रचार करने के लिए, स्वयं वो केवल 8 श्लोक छोड़ गए जिन्हें हम शिक्षा आश्रय के नाम से जानते हैं। बिल्कुल पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मानव है, नाम के उच्चारण का एक लाभ क्या है कि हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग, सबसे पहले साधु संग में रहोगे तो फिर हरि नाम की महिमा का ज्ञान सुनने में मिलेगा। और जब आप हरि नाम का उच्चारण करोगे इसके द्वारा हृदय की जो मैल है ये भी दूर होगी। आगे महाप्रभु ने क्या कहा, श्रीमद् भागवतम सुनो। श्रीमद् भागवतम का श्रवणम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में क्या है, भगवान का ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान। व्यासदेव जी अनेक वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था विद्यार्थ सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है उनके कार्य में, और जैसे ये विचार कर रहे थे वहाँ कौन पहुँच गए, नारद मुनि, जिन्होंने कहा कि ये बेचैनी का कारण क्या है, हमने शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया, फिर उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम दिया। श्रीमद् भागवतम है पका हुआ फल, गामा का पकड़ो फल, और ये पका हुआ फल हमारे पास आ रहा है गुरु परंपरा द्वारा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर एक फल नीचे पहुँचाया जाए अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा तो पूरे रूप से पहुँचेगा, अगर कोई फल को ऊपर से फेंकेगा तो नीचे टुकड़े टुकड़े में खराब होगा। तो इसलिए हमें ये श्रीमद् भागवतम का संदेश प्रमाणिक प्रतिनिधियों द्वारा सुनना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवतम में क्या है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो श्रीमद् भागवतम को सुनो और पढ़ो। इस विषय में भागवतम में कहा गया है, नास्ता प्रेषु अवधेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवत युद्धमा श्लोक है भक्ति भावदी नहीं सही। अगर आप ध्यान से श्रीमद् भागवतम को सुनोगे तो हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाएगी और भक्ति का भाव हृदय में पड़ेगा। इसलिए इस्कॉन के केंद्रों में रोज सुबह भागवत का अध्ययन किया जाता है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो जो हृदय की मैल है ये दूर होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर बल दिया है कि हमें हमें रोज क्या ध्यान से श्रीमद् भागवतम भी सुनना चाहिए। तो सुनो और पढ़ो। प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया था कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और उनको आगे पढ़ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया इस सेवा पर, और स्वयं प्रभुपाद जी रात को जागते थे 11-12 बजे, सुबह तक इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। अगर आज सारे विश्व में हजारों की संख्या में भक्त जुड़ रहे हैं, उनका एक कारण यह है कि इन ग्रंथों का प्रभाव, इन ग्रंथों में शुद्ध भक्ति का ज्ञान है प्राय है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भागवतम का अध्ययन भी बड़ा आवश्यक है। आप में से कितने भक्तों के घरों में भागवतम का सेट है? आप में से कितने भक्त हो जो कि रोज भागवतम को पढ़ते हो? सबको प्रयास करना चाहिए, और आपको खुशी होगी जानकर कि प्रभुपाद जी जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। आज लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में आप श्रीमद् भागवतम को प्राप्त कर सकते हो। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पढ़े भागवतम को। साधारण समाज में सब अखबार पढ़ते हैं, टीवी में देखना चाहते हो क्या है, क्या घटना बीत रही है। तो इसी प्रकार हमें आध्यात्मिकता में भी रुचि लेनी चाहिए, बड़े ध्यान से भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए और फिर इस शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, पहला आदेश क्या था, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप कहोगे फिर सबको कानपुर छोड़कर मथुरा जाना चाहिए। ऐसे तो आपका कानपुर भी एक रूप से तीर्थ है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भी यहाँ काफ़ी समय काटा था। प्रभुपाद जी कानपुर में थे और प्रभुपाद जी की इच्छा भी थी कि कानपुर में एक सुंदर मंदिर बने। और आज आप देख रहे हो देवगी नंद प्रभु सब भक्तों के प्रयास है, ये सुंदर मंदिर तेजी के साथ बन रहा है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी भी इस शहर में थे। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने भारत के अनेक शहरों में समय काटा, बॉम्बे में, दिल्ली में, झांसी में, कानपुर में। और प्रभुपाद जी का प्रयास क्या था कि लोगों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा मिले। पर जितनी सफलता प्रभुपाद जी को मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को कहा। तो और सब मथुरा में रहने जाओगे, आगे ही वहाँ जमीन बहुत महंगी है, अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं। तो पूरे विश्व के लोग जाएंगे मथुरा, तो फिर कठिनाई से स्थान में मिलेगा। तो क्या करो, जहाँ भी रह रहे हो उस स्थान को वृंदावन बना लो। जहाँ भी रह रहे हो, कानपुर हो, लंदन हो, प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा ये जो मंदिर हैं ये लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में नहीं है, ये सब कहाँ हैं, वैकुंठ धाम में। तो जहाँ भी अब रह रहे हो उस घर वहाँ आध्यात्मिक वातावरण रखो। जो घर में खाते हो पहले उसे भगवान के चरणों में भोग लगाओ। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो कि भोग लगाए बिना खाएं वो क्या कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो खाओ पहले मुझे भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम और भक्ति के साथ जल भी मुझे अर्पण करोगे मैं स्वीकार करूँगा। यह एक उदाहरण कि आप अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण रखो और जो खाओ भगवान को भोग लगाओ। और घर में आचार्य विग्रह की स्थापना भी कर सकते हो। अगला नियम क्या था, श्रद्धा के साथ भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करना। तो भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। इस आचार्य विग्रह और भगवान में अंतर है अंतर नहीं अंतर। भगवान अपने आप को हरि नाम कली काले नाम रूप कृष्ण उदार, भगवान अपने आप को उनके नामों के द्वारा भी प्रकट करते हैं। भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में भी प्रकट करते हैं। इस आचार्य विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। आप शास्त्र में इस विषय पर अनेक लीलाएं पढ़ते हो कि इस आचार्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। ऐसे चैतन्य चरितमृता में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है साक्षी गोपाल की। एक धनी व्यक्ति यात्रा कर रहे थे कर रहा था और उस यात्रा को सफल बनाने में एक ब्राह्मण ने सहयोग दिया। धनी व्यक्ति बड़ा भारी था इस ब्राह्मण का। उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचा दी, मैं तुम्हारे लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो अपना कर्तव्य किया ब्राह्मण के रूप में, कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। पर धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने सेवा जरूर करनी है। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा लूँगा। धनी गरीब ब्राह्मण ने कहा, आप तो इतने रईस हो, मैं हूँ गरीब ब्राह्मण, आपके घर वाले कहाँ मानेंगे इस रिश्ता के। धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मेरे घर में जैसे मैं कहूँ वो चलता है, मेरा हुक्म चलता है। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अगर यही है आपकी इच्छा तो गोपाल विग्रह के समक्ष आप ये वादा दीजिएगा। तो जब ये धनी व्यक्ति घर लौटा, उसने अपनी पूरी कथा सुनाई कि इस प्रकार यात्रा के दौरान वो बीमार हो गए थे और इस जवान ब्राह्मण ने सहयोग दिया यात्रा को सफल बनाने में, और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि उनकी बेटी की शादी उनके साथ हो जाए। पत्नी ने कहा, कभी रही शादी होगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और थोड़ी देर बाद जब गरीब ब्राह्मण ने कुछ सुना नहीं तो आया धनी ब्राह्मण के पास, सेठ जी याद है ना आपने वो वादा दिया था। सेठ जी चाहे हृदय से तो चाहते थे कि बेटी का विवाह उनके साथ हो, तो क्योंकि घर में सब इसका विरोध कर रहे थे, मजबूरन उन्हें चुप रहना पड़ा। फिर ये गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणों को लेकर आया। ब्राह्मणों ने कहा, सेठ जी उनके बेटे को ब्राह्मण को वचन दिया है, उसका पालन तो जरूर करना चाहिए, ये तो महान अपराध होता है। तो इस गरीब ब्राह्मण धनी ब्राह्मण के बेटे ने कहा, अरे भाई तुम जानते नहीं ये ब्राह्मण कितना होशियार है, जब मेरे पिता यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें भंग खिला दिया, और ये उम्मीद थी कि उनकी संपत्ति उसके पास आ जाए। तो सारे ब्राह्मण कहने लगे, देखो हमें कुछ कहता है और असलियत कुछ और है। गरीब ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसे नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। तो गरीब धनी ब्राह्मण के बेटे ने कहा, कोई साक्षी है क्या तुम्हारा क्योंकि ये कह सके कि मेरे पिता ने ये वचन दिया था। गरीब ब्राह्मण ने कहा, है साक्षी, कौन कौन? गोपाल। गोपाल। तो अमीर ब्राह्मण के बेटे ने सोचा कि मूर्ति वो पत्थर की, वो गवाही देगी, वो वृंदावन में है इतनी दूर। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा गोपाल विग्रह साक्षी बन सकता है तो मैं उसके निर्णय को स्वीकार कर लूँगा। तो भग गए अपने विग्रह के पास। गरीब ब्राह्मण ने प्रणाम किया और कहा, मेरी इज्जत का प्रश्न है, आप साक्षी थे। भगवान ने कहा, मैं तो चल नहीं सकता, भगवान थे विराजमान वृंदावन में और ये पहुँचना था उड़ीसा, मैं तो इतना चल नहीं सकता, भक्त ने कहा भगवान से अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो, और फिर भगवान साक्षी बोले। तो हमें ये अनेक कथाएं मालवीय पूरी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, तो मानंद रूप पूरी की कथा है जिसमें भगवान के विग्रह ने खीर का प्याला चुरा लिया था, क्यों अपने फल के लिए। तो अगर हम सोचेंगे कि केवल मूर्ति है तो वो मूर्ति रहेगी, अगर हम सोचेंगे कि भगवान है यहाँ तो फिर इसे आर्ष विग्रह में भगवान है। तो भक्ति के पांच अंगों में पांचवा क्या था, श्रद्धा और आदर के साथ भगवान के आर्ष विग्रह की सेवा करना। तो हमें सदा ये सोचना चाहिए क्या कि इस आर्ष विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति के जो पांच अंग हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो संक्षेप में क्या है, जय श्री कृष्ण। तो पांच अंग क्या हैं, पहला है साधु संग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो महाप्रभु ने कहा अगर हम इन पांच अंगों का पालन कर सकते हैं तो फिर भक्ति के मार्ग में सरलता से आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। महाप्रभु ने वैसे तो बहुत गहरा संदेश दिया था, पर सार रूप में इन पांच को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, और इन पांच का पालन हर व्यक्ति कर सकता है। कुछ कठिनाई है इसमें, तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संगत में रहें। साधु संगत में रहोगे तो सदा सुनते रहोगे क्या, इनाम की महिमा। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए हम अभक्तों की संगत से बचें और साधु संगत में रहें। हरे कृष्णा। मुझे प्रेम हरि नाम ने कहा था कि पहले उन्होंने आप लोगों को 6 बजे बुलाया था, तो मैंने कहा 7:30, तो उन्होंने कहा था 8:30 तक समाप्त करना चाहिए। तो थोड़ा समय मैं छोड़ना चाहता हूँ प्रश्नों के लिए, क्योंकि एनी क्वेश्चंस, प्रश्न है कोई, कोई प्रश्न? नो? कॉन्ग्रीगेशन के भक्तों से कोई प्रश्न? यस, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? आई एम सॉरी।
हरे कृष्ण।
Sorry, I can't hear.
He's saying Nara Muni Uddhava Maharaj 3 instructions to deal with the devotees.
Yeah.
So you mentioned those instructions on how to deal with the 3 category of devotees. Those who are asking you, those who are asking you, and those who are
asking you. Yeah. Nara Muni says, when you have the opportunity to associate with those who are more advanced, you should become very joyful. And the Bhagavatam gives an example of a peacock. When it sees clouds for the first time in the rainy season, it dances in ecstasy. So when you meet somebody more advanced, one should become joyful, because you're going to get wisdom that's going to help you on the spiritual path. When you meet somebody equally advanced, Narada Muni says, make friendship. Friendship in spiritual life means we agree to work together to serve the Lord. We agree to serve together to preach. We agree to serve together and execute different aspects of devotional service. Friendship in material life means we facilitate each other's sense enjoyment. Friendship in spiritual life means we work together to fulfill the mission of the Lord. And when you meet somebody less advanced, then we display compassion. And compassion means we then endeavor to preach. How do you know, is he my equal or is he my junior? That's a typical question that devotees ask. Of course, on the one hand, we have been advised to adopt the Trinada Pisanichira mentality. That is very humble. So that's a safer path. Think yourself to be the most fallen. But we should not artificially think that I'm the most fallen and not act in that manner. Sometimes you see devotees say, Prabhuji, I'm very fallen. But internally, they say, don't tell me anything, I know everything. Well, that's a very common factor. So we should generally feel humility in spiritual life means I'm ready to be directed, corrected, guided. And if you're in doubt, is he my senior, is he my equal, is he my junior, then take the help of a senior Vaishnava. You have counselors, guides, take their help. When you're in doubt, take help. Or President Puche. Aap Pucho. Aap baar baar inka haath uthate ho kyun? Haan?
I don't understand.
बाद में बात कर लेंगे और प्रश्न पूछे यस आई थॉट यू ऑल विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयरफॉर आई लव सम टाइम फॉर क्वेश्चंस यस व्हाट इज द मीनिंग टू
वर्शिप विद फेथ
वर्शिप विद फेथ इन अदर वर्ड्स वी शुड हैव फेथ हियर इज गॉड प्रेजेंट इन द डीडी फॉर्म. We should have that confidence. You follow? We should not think, I may worship the deity, but I may not have full faith that here is God. I'm worshiping because everybody else is worshiping. So I'm also doing it. But we must have faith. Here is God manifesting himself in the deity form. Yes. And as you practice devotional service, your faith will get stronger. Just like they say, practice makes a man perfect. A mother, as she takes care of her child, her attachment increases. Yes.
Yeah.
No, deity worship is also in Kali Yuga. In Dwarpa Yuga, they will worship the deity very opulently. People will go and give gold, silver, and so on. But that you don't have to do. If you can't afford it, fine. But if you do it, people will steal it. So you can worship the deity. But in Kali Yuga, deity worship is also there. Lord Chaitanya recommended deity worship. We recognize that God disincarnates in His Acharya Vigraha form. Otherwise, we would not have all these deities. Lord Chaitanya Himself would go and dance in front of the deities. In Kali Yuga, we do the holy name and deity worship. Yes. Yes. Why? It goes down because we stop taking the medicine. Narada Muni says that sometimes we prematurely stop taking the medicine and then you get a relapse. The key to spiritual advancement is regular chanting, hearing, etc. So, if you sincerely follow this process, then you're on the safe path. Your enthusiasm goes down because you become weak in chanting. You stop associating with devotees and so on. Okay? Any other questions? Yes. Now there are a lot of questions. How to
get rid of this kind of attitude that I am better than somebody else?
That is called pride, false ego. And how to get rid of it? By attentive chanting of the holy name. Attentive chanting of the holy name is a cure for all diseases. And inattentive chanting of the holy name is the cause of all the problems. One medicine for all diseases. You want to develop 26 qualities, you want to develop humility, you want to be enthusiastic, only one medicine. All right? Any other questions? Or go impression? Chanting mahatvapurn hai, but seva bhi mahatvapurn hai. Kabhi kabhi bhakt kehte hain, hum dekhte hain bhakt, wo chanting karenge sara din, par seva nahi karenge. सेवा करने जाओ तो कहते अरे मैं जाप खत्म नहीं हुआ और सारा दिन जाप कर रहे हैं. तो जाप भी कीजिए और सेवा भी कीजिए, दोनों महत्वपूर्ण हैं. जब हम जाप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए. ठीक है. Go ahead. Any more questions? Should we stop now? Hare Krishna.